ये SBS उर्दू है। क्या आप जानते हैं कि आपका दिल कितना तवाना है? अपने दिल के बारे में जानना जरूरी होता जा रहा है, क्योंकि हर रोज तकरीबन 21 ऑस्ट्रेलियन दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर जाते हैं और अगले 5 साल में 30 से 65 साल की उम्र के हर 10वें ऑस्ट्रेलियन को हार्ट अटैक का खतरा लाहक होगा। दिल का दौरा अचानक भी पड़ सकता है। वो कौन से अफराद हैं जिनका अमराज कल्ब में मुब्तला होने का खतरा ज्यादा होता है और दिल का दौरा पड़ने की सूरत में क्या फौरी इकदाम करना चाहिए, इसी मौजू पर इस वक्त हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर अखवंजी से, जो कार्डियक सर्जन है प्रिंस ऑफ वेल्स हॉस्पिटल न्यू साउथ वेल्स में। डॉक्टर साहब, वो कौन लोग हैं जिन्हें दिल की तकलीफ हो सकती है और वो हार्ट अटैक की हाई रिस्क कैटेगरी में हो सकते हैं?
तो ऐसा है कि वो यंग जनरेशन में भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, बट मोर कॉमनली वो मेन है उसमें एज मोर देन 45, वुमेन्स एज मोर देन 55, फैमिली हिस्ट्री जिनकी ज्यादा है कि जिनके फैमिली में पहले से हार्ट अटैक हुआ है, दे आर मोर एट इंक्रीज रिस्क। पीपल हुज कोलेस्ट्रॉल हैज बीन हाई, उनके स्मोकिंग की हैबिट है, उनका ब्लड प्रेशर हाई है, स्पेशली डायबिटीज पेशेंट्स है, उनका वजन ज्यादा है, ओबेसिटी और फिजिकल इनएक्टिविटी है, दीज आर द मोर इंक्रीज रिस्क फैक्टर्स उनके लिए, वो पेशेंट्स को ज्यादा हार्ट अटैक होने की नौबत रहती है।
कोलेस्ट्रॉल का लफ्ज बहुत आम इस्तेमाल होता है और मिस यूज भी शायद किया जाता हो। कोलेस्ट्रॉल हाई होना असल में दिल पे या दिल की शरियानों पे क्या असर पड़ता है?
ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल ऐसी चीज है कि वो बंदा अपने जो खाना पीना है उससे भी बढ़ता है और अपने बॉडी में भी वो जो लीवर और उसके हिसाब से बनता है, पर उसमें जो एक पोर्शन है उसको बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, वो LDL कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। तो LDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो हाई रिस्क पीपल है, जो जो पेशेंट्स है, उनको वो लेवल को खास तौर से ध्यान रखना है कि पहले तो 1.8 मिलीमोल का जो लेवल था, अभी तो उसका टारगेट लेवल और भी कम हो गया है। तो वो कोलेस्ट्रॉल है वो जो खराबी करता है, तो उससे प्लाक बनता है, वो अल्टीमेटली प्लाक पेशेंट्स की एज यंग एज में भी वो धीरे धीरे बनना लगता है और उसको बाद में जाके दूसरे रिस्क फैक्टर्स भी इम्पोर्टेंट है, कुछ चेंजेबल होते हैं, कुछ नॉन चेंजेबल होते हैं, पर कोलेस्ट्रॉल इज समथिंग वो डेफिनेटली प्रूवन है, गाइडलाइंस है कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में करने से आपके रिस्क फैक्टर्स को फर्क पड़ता है। रिस्क फैक्टर्स है उसका स्कोर होता है, आप अपने जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाए, वो आपके बाकी के रिस्क फैक्टर्स देखेंगे, आपके बॉडी में दूसरी जगह कोई ऑलरेडी इफेक्ट आने लगी है, तो देन द टारगेट लेवल इज डिफरेंट। इसमें एक होता है प्राइमरी प्रिवेंशन, जो आपके हार्ट अटैक आने के पहले से शुरू में आप प्रिवेंशन का चालू करें, और एक होता है कि आपको पहले से एक बार पता चल गया आप हार्ट के मरीज है, ब्लॉकेज प्रोसेस ऑलरेडी चालू हो चुकी है, तब वो उसका टारगेट लेवल और भी कम करना पड़ता है।
दिल के मर्ज में मुब्तला अफराद खुद अपने तजुर्बात के बारे में क्या कहते हैं? सलमान आरज़ाए कल्ब के मरीज थे जिन्हें 1999 में दिल के मर्ज का पहली बार पता चला। उनके रिस्क फैक्टर्स क्या थे और उन्हें सबसे पहले किन अलामात से ये शुबा हुआ कि वो दिल के मरीज हैं?
नॉर्मली मैं वॉक करता था शाम के वक्त, इत्तेफाक से शाम के वक्त मैं निकला, तो जब मैं वॉक कर रहा था ऐसा महसूस हुआ कि मुझे चेस्ट कंजेशन हो रही है हल्की, तो वो इग्नोर किया मैंने। उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर वही चीज मुझे फील हुई, उसके बाद मैंने अपने वाइफ से डिस्कस किया कि इस तरह से मुझे फील हो रहा है, तो चूंकि वो खुद भी डॉक्टर हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं आप फौरन जीपी को दिखाएं। तो जब मैं जीपी के पास गया तो जीपी ने मेरा ECG लिया, लेकिन मैंने उसको अपनी कंडीशन बता दी थी कि मुझे ऐसा हो रहा है, लेकिन ये रेगुलर नहीं होता था, लेकिन कभी कभार ऐसे फील होता था मुझे कि चेस्ट जैसे कंजेशन हो रही है। तो जीपी ने ECG करने के बाद मुझे कहा कि नहीं आप जाके स्ट्रेस टेस्ट भी करवाएं, क्योंकि आप जो बता रहे हैं हो सकता है कि ये हमारे ECG में सिटिंग ECG में ना आए। तो मैंने स्ट्रेस टेस्ट करवाया तो उसमें थोड़ी सी वेरिएशन आई थी मेरी रीडिंग्स के अंदर। तो उसके बाद स्ट्रेस टेस्ट के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप एंजियोग्राम कराएं, वो आपको क्लियर पिक्चर बता सकता है कि क्या एक्चुअल कंडीशन है आपके हार्ट की। तो वो फिर मैंने अपॉइंटमेंट लिया वेस्टमिड हॉस्पिटल में, तो वहाँ एंजियोग्राम में जब रिजल्ट आए तो उसमें उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि नहीं आपकी आर्टरीज ब्लॉक हैं कुछ, तो उसमें परसेंटेजेस भी थी 80% 90%।
80-90% यानी 80-90% ऑर्टरी ब्लॉक थी,
दो आर्टरीज ब्लॉक थी और 30-50% ब्लॉक थी। कहा कि ये ऐसी कंडीशन है कि हम इसमें स्टेंट नहीं डाल सकते, तो इसके लिए तो सर्जरी ही होगी आपकी। तो वो डिसीजन आपने लेना है कब करवाना है और किस तरह से कितना टाइम लेंगे आप, क्योंकि ऐसी कंडीशन नहीं थी कि मुझे इमरजेंसी में वो सर्जरी करते, क्योंकि ऐसा था कि वो कह रहे थे कि अभी आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, हो सकता है हम कुछ मेडिकेशन शुरू करवा दें आपकी तो वो आपको थोड़ा सा रिलीफ दे दें। लेकिन फिर बाद में जब घर पर डिस्कस किया हमने तो यही डिसाइड किया कि नहीं, बेहतर यही कि अभी इसको सर्जरी करवा ली जाए। सर्जरी के बाद तकरीबन एक हफ्ता मैं हॉस्पिटल में रहा था और उसके बाद फिर 3 महीने का रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं इनके हॉस्पिटल की तरफ से, तो वो रेगुलर अटेंड करे मैंने हॉस्पिटल जाकर। लेकिन मेरा क्योंकि क्वाइट अर्ली एज में हो गया था तो मेरी रिकवरी सिग्निफिकेंटली बहुत तेज हुई एज कम्पेयर टू तो ओल्ड एज में जाके जब करवाती हैं।
तकरीबन 40 साल की एज ग्रुप,
क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई है तो अब तो टेस्ट भी मेरा ख्याल है जल्दी आपको बता सकते हैं कि आपका हार्ट कंडीशन क्या है। तो लेकिन जनरली अभी भी उस वक्त भी ऐसे था, मेरा ख्याल अब भी ऐसे ही है कि जब आप हार्ट की कंडीशन के साथ किसी भी जीपी के पास जाते हैं तो उसको एज ए अर्जेंटली ट्रीट करते हैं। जीपी ने भी फौरन मुझे रेफर किया, उसके बाद टेस्ट के बाद जो रिजल्ट्स आए तो मैंने जब डिस्कस किया वाइफ से तो उन्होंने भी सजेस्ट किया कि ना आप फर्दर टेस्ट करवाएं और फौरी तौर पर बताना चाहिए कि आपकी क्या कंडीशन है और पूरी तरीके से डिस्कस करना चाहिए आपकी हिस्ट्री अगर कोई है, फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। क्योंकि मेरे केस के अंदर मेरे जितने रिस्क फैक्टर्स थे कोई भी उसमें नहीं शामिल हो सकता, क्योंकि अल्कोहल एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है और डायबिटीज बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है और एज, ये चारों फैक्टर्स मेरे नेगेटिव थे। तो डॉक्टरों ने फिर ये अंदाज़ा लगाया कि आपकी जो फैमिली हिस्ट्री है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि मेरे दो चचाओं को बहुत अर्ली एज में हो चुकी है ये हार्ट की सर्जरीज और मेरे दोनों बड़े भाई हैं उनके साथ भी थोड़ी सी कंडीशन रही है हार्ट की। तो फैमिली हिस्ट्री डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि आपके लिए जीन्स के अंदर भी हो सकते हैं, ये कि जीन्स आपके उसमें
यानी आपने 5 फैक्टर्स एक तरह से जिक्र किए, एक तो ये कि सिगरेट नोशी करने वालों, शराब नोशी करने वालों का, और अगर ज्यादा उम्र है आपकी और डायबिटिक हैं और फैमिली हिस्ट्री है,
तो मैं कह रहा इसमें तीनों चीजें बहुत इफेक्टिव होती हैं अगर सब कोऑर्डिनेशन के साथ करें और डिसीजन उसी तरह से लें।
ऑस्ट्रेलिया में आपने दिल के अमराज के लिए जो सहूलियात हैं और जो निज़ाम जिस तरह यहाँ पे काम करता है उसको किस मेयार का पाया?
बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली जो हॉस्पिटल स्टाफ होता है अलाइड स्टाफ वो बहुत केयरिंग है और काफ़ी आपको आपको कंफर्टेबल फील करवाते हैं वो हॉस्पिटल के अंदर। जो मेरा तजर्बा है उसके हिसाब से तो बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड की और उसमें ये कह पब्लिक हॉस्पिटल था तो मुझे कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा।
यानी ये सब मेडिकेयर से कवर होता है?
जी, हर चीज मेडिकेयर के कवर।
और इसमें क्योंकि ये दर्द दिल का मामला है तो शायद इसमें वेटिंग टाइम भी उस तरह काउंट नहीं होता जैसे और दूसरी किस्म की सर्जरीज़ में।
ये प्रायोरिटी पर आपको कंसीडर करते हैं।
डॉक्टर जाकिर इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि सीने के बाएं जानिब दर्द दिल के मर्ज की खास अलामत में से एक है, मगर कार्डियक सर्जन का कहना है कि इसके अलावा भी कई और अलामत या वार्निंग साइंस पर तवज्जो देना जरूरी है।
हाँ, तो वो उसमें पेन हो सकता है हार्ट के तरफ, उसको प्रेशर की तरफ हो सकता है, कभी वो छाती की तरफ होता है, कभी बैक में, और वो एटिपिकल सिम्टम्स भी होते हैं कुछ लोगों को, गर्दन की तरफ, दांतों की तरफ, बाजुओं में भी उनको पेन जा सकता है। तो वो पेन अनयूजुअल हो, वो 5 मिनट से 10 मिनट कंटिन्यूस चालू रहे और उनको ऐसा लगे घर में अगर एस्पिरिन है तो वो एस्पिरिन ले लिए और उससे भी फर्क नहीं पड़ता है, वो पहला तो काम वही कर ले के रेस्ट कर ले और वो चीज उनको पहले अगर फैमिली हिस्ट्री है, ऑलरेडी हिस्ट्री है तो वो आपको पता चल जाता है कि हार्ट का पेन किस तरफ है। पर बाद लोगों को ऐसा है कि वो हार्ट अटैक इस तरह से आता है कि उनको कोई सिम्टम्स, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स को कभी कभी कोई सिम्टम्स नहीं होता, उनको पेन नहीं होता, उनको सांस में फूल जाता है, सांस फूल जाता है, कभी कोई पर्सन को उनको चक्कर आने लगते हैं और क्योंकि वो चक्कर इस तरह से आता है कि उनके हार्ट का खून सर्कुलेशन नहीं होता है इनफ तो वो एरिथमिया में चला जाता है, उनकी जो नसें है वो इरेगुलर चलती है, बट मोस्ट कॉमनली पेन होता है और इस तरह भारीपन लगता है और दबाव जैसा रहता है। पर एज मैंने बताया कि वो एटिपिकल पेन कैन बी ऑन द बैक, पूरा बैक की तरफ गया, गर्दन की तरफ गया, हाथ और बाजुओं की तरफ गया और वो एग्जर्शन से ज्यादा होता है, यानी आप आराम कर लिए तो रुक जाता है और आप चलना वापस चालू करो, एग्जर्शन चालू करो, तो इट्स मोर कॉमनली रिलेटेड टू एग्जर्शन के अगर आप हार्ट का ब्लड की सप्लाई की जरूरत है और उसको आप एक्टिविटी ज्यादा करोगे, अगर ब्लॉकेज की वजह से वो हार्ट पंप नहीं कर पाता है तो वो एक सर का सिग्नल देता है। कुछ बंदे ऐसे हैं अनफॉर्चुनेटली उनका सडन डेथ होता है तो उनको वो सिग्नल नहीं मिलते हैं पर वो हार्ट फिब्रिलेशन में चला जाता है तो वो बंदे हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते, तो उनको इमीडिएटली अगर इस तरह से हो गया तो वो सीपीआर की आपको नौबत आती है कि घर में बंदे को पता होना चाहिए सीपीआर किस तरह से करना है। घर में अगर एस्प्रिन टेबलेट्स पड़ी हुई है और उनको कोई एलर्जी वगैरह नहीं है तो उनको 300 मिलीग्राम एस्प्रिन सबसे पहले दी जाए, उनको इस तरह जगह आराम से लिटाया जाए और 45 डिग्री एंगल पे रखा जाए। अगर आजू बाजू आपको पता है कि कोई बंदा अगर बहुत ज्यादा मुश्किल है और सीपीआर कर सकता है, अगर किसी ने सीखा हुआ है वो सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी रिसेसिटेशन तो उनको किस तरह से कंप्रेस करना है, तो वो तो बात की तैयारी है। वो जो बंदा अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है और ब्रीदिंग भी नहीं कर रहा है तब वो चीजें आती है, पर अगर बंदा पेन की तरफ है तो पहला काम ये करके उनको घर में अगर वो एस्प्रिन टेबलेट है या फिर जीभ के नीचे रखने वाली हार्ट की टेबलेट है तो वो दे दिया, 5 मिनट राह देखी और उसके बाद भी वो नहीं जा रहा है तो इमीडिएटली सही चीज यही है कि आप 000 को फोन करें, एम्बुलेंस को बुलाए, क्योंकि वही सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है कि वो इस तरह से नजदीक रहा जाए। कि अभी इसमें टाइम इज क्रिटिकल, हार्ट की सप्लाई अगर आप बंदे को हार्ट अटैक आता है तो विद इन जितना जल्दी हो सके उसका सर्कुलेशन चालू हो जाए तो वो डैमेज से बच सकता है, क्योंकि मसला यही है कि उसको अगर सर्कुलेशन नहीं चालू हुआ तो वो डैमेज आर्टरी जो स्कार बन जाता है मसल्स का स्कार बन गया तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो ये वेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भी उसके लिए एक्शन जितना जल्दी हो सके लिया जाए।
ये थे प्रिंस ऑफ वेल्स न्यू साउथ वेल्स हॉस्पिटल के कार्डियक सर्जन डॉक्टर जाकिर अखन जी। अगर आप इसी तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो SBS रेडियो ऐप पर हमारे मुस्तकिल पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए।